देवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरे भवति नैष्ठिके मोकं कृति वाचालं मंगलं हेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् श्रीपरमानन्दमाधवम् आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ सप्तम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 40 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। नदति क्वचित् उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावनया युक्त तन्मयो नोचकारः नदति क्वचित् उत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावनया युक्त तन्मयो नोचकारः नदति क्वचित् उत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावनया युक्त तन्मयो नोचकारः। नदति क्वचित् उत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावनया युक्त तन्मयो नोचकारः। क्वचित् उत्कण्ठ विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् भावनायुक्त तन्मयो नचकार। नदति क्वचित् उत्कण्ठ विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावनायुक्त तन्मयो नचकार। नदासि क्वचित् उत्कण्ठ विलजो न सति क्वचित् तद्भावना युक्त तन्मयो न चकार मतजि नदति क्वचित् उत्कण्ठ विलजो न सति क्वचित् क्वचित्तद्भावनायुक्त तन्मयोनुचकार मतजि नदति जोर से पुकारता है हे कृष्ण कहकर क्वचित् कभी उत्कंठ उत्सुक होकर विलज्जा लज्जा रहित नृत्यति नाचता है क्वचित् कभी क्वचित् कभी तद्भावना कृष्ण के भावों से युक्त युक्त लीन होकर तत्मय ऐसा सोचते हुए कि वह कृष्ण बन गया है अनुचकार अनुकरण किया हा निसंदेह ईश्वर का अनुवाद और भावार्थ तत्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते तात्पर्य प्रहलाद महाराज कभी यह अनुभव करते कि भगवान उनसे दूर चले गए हैं तो वे जोर से उन्हें पुकारते जब वे देखते कि भगवान उनके समक्ष हैं तो वे प्रमोदित होते कभी कभी अपने आप को परम में लीन समझकर ये भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते और भगवान से विलग होने पर ये उन्माद के लक्षण प्रकट करते भक्त की इन भावनाओं को निर्विशेषवादी कभी भी समझ नहीं सकते नहीं सकेंगे इसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के भीतर गहराई में प्रवेश करना होता है प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म की होती है किंतु परमात्मा तथा अंततोगत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति के लिए और आगे जाना होता है तब भक्त भगवान की शांत दास्य सख्य वात्सल्य या माधुर्य जैसे यहां पर प्रहलाद महाराज की भावना वात्सल्य रस की थी जिस प्रकार माता के दूर चले जाने पर बालक रोता है उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को लगता कि भगवान दूर हैं तो वे रोने लगते पुनः प्रहलाद जैसे भक्त कभी कभी उन्हें शांत करने के लिए भगवान को माता के समान दूर से आते देखते हैं और बालक से यह कहते सुनते हैं कि मेरे बेटे मत रो मैं आ रहे हूं तब भक्त अपने चारों ओर की परिस्थितियों की परवाह ना करके यह सोचते हुए नाचने लगता है कि ये रहे मेरे स्वामी आ रहे हैं इस प्रकार भक्त उन्नत हर्षित होकर कभी कभी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करता है जिस तरह ग्वाले जंगली जानवरों के आचरण की नकल उतारते हैं किंतु वह सचमुच भगवान नहीं बनता। प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सोपदन्तिकम्। वन्देऽं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रदातं सगणरघुनाथ नितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशवानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो मावदानाय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरतिश नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नदति क्वचित उत्कंठ विलज्ज अनुस्तति क्वचित क्वचित तद्भावनायुक्त तन्मयो अनुचकार। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में श्री नारद मुनि अपने शिष्य प्रहलाद महाराज के प्रेम विहोल अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के सामने नारद मुनि अपने शिष्य प्रहलाद के गुणों का वर्णन कर रहे थे, तो इस श्लोक में विशेष रूप से प्रहलाद महाराज के प्रेम विहल अवस्था का वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि कि प्रहलाद महाराज बाल्यकाल में किस प्रकार भगवत प्रेम में विहल होकर कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे और कृष्ण का दर्शन करते थे, और जब दर्शन करते थे तो आनंदित होते थे। तो इस प्रकार की अवस्था कोई साधारण अवस्था नहीं है। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज कोई साधना सिद्ध भक्त नहीं थे, ये भगवान के नित्य पार्षद वैकुंठ के द्वारपाल सुमुख थे, जो भगवत इच्छा से भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। इसलिए हम देखते हैं कि नारद मुनि प्रहलाद महाराज की माता को उपदेश देने से पहले ही बता चुके हैं देवताओं को, इस स्त्री के गर्भ में जो शिशु है ये कोई साधारण शिशु या असुर नहीं है, हिरण्यकशिपु का असुर संतान नहीं है, ये परम महाभागवत है। तो इससे पता चलता है कि नारद मुनि को पता था कि न प्रहलाद महाराज ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, और जन्म के पश्चात ही प्रहलाद महाराज ने भगवान के प्रति अपने प्रेम विवल भाव का प्रदर्शन किया है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है, नारद मुनि बता रहे हैं कि बाल्यावस्था में जब बालकगण या शिशुगण क्रीड़ा के प्रति आसक्त होते हैं, बाल्य क्रीड़ा के प्रति आसक्त होते हैं, शिशुओं को हम जितना भी रोकें वो क्रीड़ा के बिना रह नहीं सकते, ये स्वाभाविक है उनके लिए। किंतु प्रहलाद महाराज की क्रीड़ा ये साधारण शिशु की क्रीड़ा नहीं थी, ये बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण का ही स्मरण करते थे, भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे, भगवान कृष्ण उनके सामने से दूर चले जाने पर उनके विरह का अनुभव करते। तो इस प्रकार की अवस्था सिद्ध अवस्था में देखी जाती है। तो ये नित्य सिद्ध भक्त थे प्रहलाद महाराज, अन्यथा इस प्रकार भाव का उदय होना, प्रेम का उदय होना ये संभव नहीं है। तो जब प्रहलाद महाराज भगवान का दर्शन करते थे और भगवान जब दूर चले जाते थे प्रहलाद महाराज की उत्कंठा में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि भगवान ऐसा करते हैं भक्तों के साथ, ये भक्तों की उत्कंठा में वृद्धि करना चाहते हैं जिससे उनका प्रेम भाव उनके प्रति और अधिक वृद्धि प्राप्त होगा। जिस प्रकार रासलीला में हम देखते हैं कि भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं रासलीला से, गोपियां ढूंढती हैं भगवान को, और अंत में जब भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते हैं तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि तुम में जो प्रेम भाव है उसमें वृद्धि करने के लिए, तुम में उत्कंठा उत्पन्न करने के लिए मैं अंतरित हो गया था। तो भगवान भक्तों के साथ इस प्रकार करते हैं, भक्तों की उत्कंठा वृद्धि करने के लिए, प्रेम भाव की वृद्धि करने के लिए। तो भगवान जब दूर चले जाते थे प्रहलाद महाराज से, तो प्रहलाद महाराज भगवान का विरह अनुभव करते थे, और उस विरह में हे कृष्ण कहकर वो पुकारते थे भगवान कृष्ण को। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे और हा कृष्ण कहकर क्रंदन करते थे, कहाँ मोरो प्राणनाथ मुरली भदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु यही कहकर रोते थे कि मेरे प्राणनाथ कहाँ है, ब्रजेंद्र नंदन कहाँ है, जो मुरली वदन, जो मुरली वंशी को मुख पर धारण किए हुए हैं, वंशी वादन करते हैं, ये मेरे प्राणनाथ कहाँ है, मैं कहाँ जाऊं। कहां मैं उनको प्राप्त हूं। इस प्रकार क्रंदन करते थे कृष्ण के विरह में, तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी क्रंदन कर रहे हैं। जब कृष्ण दूर चले जाते हैं तो वो रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं कृष्ण के विरह में, हे कृष्ण कहकर। जिस प्रकार प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि जब शिशु के पास से माता दूर चली जाती है, किसी गृह कार्य में व्यस्त रह जाती है, तो माता को न देखकर शिशु अपने को असहाय मानता है और माता के विरह में क्रंदन करने लगता है। और माता जब शिशु की क्रंदन ध्वनि को सुनती है, वो सहन नहीं कर पाती है। वो तुरंत शिशु को कहती है कि बेटा मत रो, मैं आ रहे हैं। तो उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज रोदन करते थे, रोते थे, तो भगवान कृष्ण उनको आश्वासन देने के लिए कहते थे कि मैं आ रहा हूं। और भगवान कृष्ण जब उनके सामने प्रकट हो जाते थे तो प्रहलाद महाराज आनंदित हो जाते थे। जिस प्रकार शिशु माता को देखकर आनंदित हो जाता है, तो उस समय प्रहलाद महाराज क्या करने लगते थे, बिलज नृत्यति क्वचित। तो भगवान को प्राप्त होकर, पास में अपने निकट प्राप्त होकर प्रहलाद महाराज बिलोजो नृत्य थी, तो ये लज्जाहीन होकर नृत्य करने लगते थे आनंद में। तो ये नृत्य तभी कोई करता है जब वो लज्जा को त्याग देता है। कभी कभी लोग हमारे मंदिर में आते हैं, भक्त लोग नृत्य करने लगते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो वो नृत्य नहीं कर सकते क्योंकि उनमें लज्जा का भाव है, लज्जा को त्याग नहीं कर सकते। तो लज्जा को त्याग करने से व्यक्ति आनंद में नृत्य कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज पारिपार्श्विक अवस्थिति की प्रति उनका ध्यान नहीं था, वो नहीं देख रहे थे कि कौन मुझे देख रहा है या मैं नृत्य करने पर कौन क्या सोचेगा, ये सब नहीं सोच रहे थे। उनका ध्यान एकमात्र भगवान कृष्ण में लीन था, जिसके कारण कृष्ण को निकट में प्राप्त होकर वो लज्जा त्याग करते हुए नृत्य कर रहे थे। नृत्य थी क्वचित, आनंद में नृत्य कर रहे थे कि मेरे प्रभु मेरे पास आ गए हैं, मेरे प्रभु मेरे निकट हैं, इसलिए वो भय रहित हो जाते थे। जब शिशु के पास माता होती है तो शिशु भय रहित हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा, कितनी भी बड़ी भयानक स्थिति उपस्थित हो जाए, फिर भी शिशु भयभीत नहीं होता है जब माता उसके पास में। तो उसी प्रकार बहुत बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी भक्त कभी भयभीत नहीं होता है जब वो अनुभव करता है कि भगवान मेरे निकट है और भगवान अवश्य मेरी सुरक्षा करेंगे। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास भक्त को होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो प्रहलाद महाराज जब भगवान कृष्ण को अपने निकट प्राप्त होते थे तो आनंद में लज्जाहीन होकर नृत्य करने लगते थे। और क्वचित तद भावना युक्त तन्मयो अनुचकार, और जब प्रहलाद महाराज सदा सर्वदा भगवान कृष्ण की चिंता में निमग्न रहते थे, तो निमग्न रहने के कारण, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में यही उपदेश देते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्यादि मांग नमस्कार, तो मत मना मन मना, तुम्हारे मन को मुझे अर्पित कर दो, अर्थात तुम्हारे मन में दूसरी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, केवल एकमात्र मेरी चिंता होनी चाहिए, मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान कृष्ण यही आशा करते हैं जीवों से, भक्तों से यही आशा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज तत् भावना, तत् भावना कृष्ण की भावना में युक्त तल्लीन थे, मग्न थे। इसलिए क्वचित तद भावना युक्त तन्मयो अनुचकार, सदा सर्वदा कृष्ण की भावना में युक्त होने के कारण यही वस्तुतः कृष्ण भावना है। जब हम कहते हैं कि हम कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं या हम कृष्ण भावना मृत संघ के सदस्य हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम सदा सर्वदा कृष्ण का ही ध्यान करें और दूसरों को यही शिक्षा प्रदान करें किस प्रकार कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। हम स्वयं कृष्ण का सदा सर्वदा चिंतन करें और दूसरों को वही शिक्षा दें, तो यही कृष्ण भावना है कि हम स्वयं कृष्ण भावना भावित हैं और दूसरों को कृष्ण भावना भावित करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज तद भावना युक्त, कृष्ण की भावना में युक्त थे, कृष्ण के चिंतन में तन्मय थे, तल्लीन थे, मग्न थे। और जब व्यक्ति कृष्ण की चिंता में मग्न हो जाता है तो उसका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसका एक शरीर है वो सोच नहीं सकता, उसके शरीर के साथ साथ आसपास में कोई व्यक्ति उपस्थित है वो कुछ नहीं देखता, केवल कृष्ण की चिंता में तल्लीन होकर कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करता रहता है, उनके रूप का चिंतन करता रहता है। तो ये कृष्ण भावना है। तो प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे, जिसके कारण वो क्या करते थे, तन्मयो अनुचकार, कृष्ण भावना भावित होने के कारण, कृष्ण की चिंता में तल्लीन होने के कारण प्रहलाद महाराज अनुचकार कृष्ण का अनुकरण कर रहे थे। जब व्यक्ति कृष्ण की लीला में तल्लीन हो जाता है तो वो कृष्ण के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, वो एकाकार हो जाता है कृष्ण के साथ। ये एकाकार निर्विशेषवादियों का एकाकार नहीं है। भक्त जब भगवान की चिंता में तल्लीन होकर भगवान से एकाकार हो जाते हैं या एक भावना युक्त हो जाते हैं तो उस समय क्या करने लगते हैं, भगवान का अनुकरण करने लगते हैं कि मैं कृष्ण हूं, या कृष्ण ऐसे बंसी वादन करते हैं तो भक्त अपने आप हाथ लेकर बंसी वादन करने का अनुकरण करने लगता है। भगवान ऐसे खड़े होते हैं त्रिभंगी त्रिभंगी में युक्त होकर तो भक्त भी ऐसे खड़े खड़े रहने लगता है, अनुकरण करने लगता है कृष्ण के भाव में, उनकी लीलाओं में तल्लीन होकर। तो ये तल्लीनता या तादात्म्य भाव ये निर्विशेषवादियों का तादात्म्य नहीं है। निर्विशेषवादी उनका तादात्म्य जो है वो भगवान से एकाकार होकर अपनी सत्ता को लुप्त कर देना चाहते हैं। तो भक्त अपनी सत्ता को लुप्त नहीं करता, भक्त और भगवान में अंतर सदा के लिए रहता है, क्योंकि जीव नित्य है इसलिए अंतर सदा सर्वदा रहेगा। किंतु कृष्ण भावना में तल्लीन होने के कारण भक्त कृष्णमय हो जाता है, कृष्ण भावना में एकाकार हो जाता है और कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगता है। और ये भाव केवल प्रहलाद महाराज प्रदर्शित कर रहे थे ये नहीं है, गोपियों ने भी ऐसे भावों का प्रदर्शन किया। गोपियां जब कृष्ण के विरह में कृष्ण को ढूंढ रहे थे वृंदावन में, पेड़ पौधों से पूछ रही थी, अंत में कृष्ण की चिंता में तल्लीन होकर वो कृष्ण जैसा अभिनय कर रही थी, अपने को कृष्ण मानकर कृष्ण के समान अभिनय कर रही थी, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही थी। तो ये भक्तों में स्वाभाविक रूप से दृष्टिगत होता है, ये कोई दोष नहीं है। कृष्ण का अनुकरण करना, लीलाओं का अनुकरण करना, ये तल्लीनता के कारण होता है, निमग्न होने के कारण। कृष्ण चिंता में निमग्न होने के कारण ये होता है, किंतु भक्त कभी ये नहीं सोचता है कि मैं भगवान हो गया। ये अनुकरण के बाद भक्त नहीं सोचता कि मैं भगवान हो गया, या अपने को भगवान घोषित कर देता है। ये सामयिक रूप से जब प्रेम विहोल अवस्था में भगवान की चिंता में तल्लीन होने के कारण भक्त इस प्रकार भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके आनंद का अनुभव करता है, ये स्वाभाविक स्थिति है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार स्थिति को प्रदर्शित कर रहे थे, अनुचकार है, अनुकरण कर रहे थे। तो इस प्रकार बाल्यावस्था में प्रहलाद महाराज ने ये प्रेम विवल स्थिति का प्रदर्शन किया है, जिसका वर्णन स्वयं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के समक्ष कर रहे हैं, अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं स्वयं गुरु। तो ये वस्तुतः शिष्य का सौभाग्य है, शिष्य ऐसा आचरण करे कि गुरु भी उसके गुणों का वर्णन करें, उसके गौरव का गान करें। शिष्य को ऐसा होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रहलाद महाराज एक आदर्श शिष्य रहे, आदर्श शिष्य थे नारद मुनि के। यद्यपि वो नित्य भगवान के पार्षद थे, फिर भी भौतिक जगत में आकर यहां तक कि भगवान भी गुरु ग्रहण करते हैं, इसलिए साधारण लोगों को गुरु ग्रहण करना यह आवश्यक है, क्योंकि भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि एक आध्यात्मिक गुरु जो प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे कृष्ण को प्राप्त करना है, ये मार्ग गुरु प्रदर्शित करते हैं शास्त्र के आधार पर। गुरु अपना मनमाना मार्ग प्रदर्शित नहीं करते हैं, शास्त्र के आधार पर महाजनों के मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज ऐसे भक्त हुए जो सभी भक्तों के लिए आदर्श हैं, और महान भक्तगण भी भक्तों का उदाहरण देते हुए प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं एक आदर्श भक्त के रूप में। इसलिए प्रहलाद महाराज हमारे सदा नमस्य हैं। तो उसी क्रम में आज हम और एक महान भक्त, जिनकी आज तिरुभाव तिथि है, श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनके संबंध में भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ये हरिदास ठाकुर ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में अंश ग्रहण करने के लिए, लीला में सहायक बनने के लिए श्री हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी अवतरित हुए थे, इसलिए उनको कभी कभी कहा जाता है ब्रह्म हरिदास। तो ये नामाचार्य नाम की महिमा जगत में प्रकट करने के लिए हरिदास ठाकुर आविर्भूत हुए, और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के माध्यम से नाम की महिमा प्रकट की। तो ये हरिदास ठाकुर की आज तिरुभाव तिथि है, जिस तिथि पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर पर अपनी भक्त वत्सलता प्रकट करते हुए उनको समाधि दी थी, और उनके विरह उत्सव का पालन एक महोत्सव के रूप में किया था। तो हरिदास ठाकुर की इस तिरुभाव तिथि के संबंध में, या तिरुभाव की लीला के संबंध में हम लोग चर्चा करने से पहले जो विरह गीति है हरिदास ठाकुर कि आज तिरुभाव तिथि है, तो जो विरह गीति जया नील प्रेम धन उसका थोड़ा गान करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये हरिदास कहेंगे कोई जया नील प्रेम धन गाना। जयानील प्रेमधन करुणा प्रचुर किताब खोज रहा है कौन इवन ओके सर
जयनील प्रेम धन करुणा प्रचुर प्रभु कथला जथको
सेना प्रभु कथला जथको
सेना प्रभु कथा जठाको कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन
कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन
कहाँ दास नाथ पतित पावन
नाथ पतित
कहाँ मोर भट जुग कहाँ कवि एक काले কোথা দেলা গোরা নতরা
একালে কোথা গেলা গোরা নতরা
একালে কোথা গেলা নলে পথি
পাশে চোটি
অনলে পাশি পাশাণী কুটিব মাথা অনলে পাশি গৌরাঙ্গ বণির নিধি কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব
সেসব সঙ্গীর সঙ্গে জয় কইল দিলা
সেসব সঙ্গে
জয় কইল দিলা সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলা
সঙ্গীর
যে কইল
বিলা
সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দা সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দা
সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দা
যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর
যে আনিল প্রেম
হেনা প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর
হেনা প্রভু কোথা গেলা
আচার্য ঠাকুর জয় আচার্য ঠাকুর আচার্য ঠাকুর শিল প্রভু পার
আচার্য ঠাকুর
আচার্য ঠাকুর শিল প্রভু জয় জয় প্রভুপা 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 প্রভুপা
প্রভুপা
প্রভুপা প্রভুপা প্রভুপা জয় জয় গুরু রে
Yeah. तो वो आचार्य ठाकुर कहाँ गए, जो करुणा पूर्वक कृपा पूर्वक इस संसार में प्रेम धन लाए हैं। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और एक साथ नटराज श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब कहाँ पर गए। उनके विरह में मैं अपने मस्तक को पाषाण पत्थर पर पिटना चाहता हूँ, इस अनल में अग्नि में प्रवेश करना चाहता हूँ। उनके विरह में हमारे लिए जीवन की रक्षा करना संभव नहीं है, तो मैं कहाँ पर जाऊँ। समस्त गुणों के आगार श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं कहाँ प्राप्त हूँ। जो लोग ऐसे चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाओं में सहयोग प्रदान किए हैं, तो उन लोगों का संग प्राप्त न होकर मैं नरोत्तम दास उनके विरह में रोदन कर रहा हूँ। तो ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की विरह प्रार्थना है, आचार्य वर्गों के विरह में वो किस प्रकार रोदन कर रहे थे, और इसके माध्यम से वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य वर्ग जो आज हमारे पास नहीं है, किंतु हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए जो अवतरित हुए थे और हमें मार्ग प्रदर्शन किया है, उनके विरह में हमें रोना चाहिए। तो आज हरिदास ठाकुर की तिरुभाव तिथि है, इस दिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपनी इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान के नित्य धाम में प्रवेश हुए थे, नित्य लीला में प्रवेश हुए थे। तो वही हरिदास ठाकुर जिन्होंने नाम की महिमा का प्रचार किया है, और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के माध्यम से नाम की महिमा का प्रचार करवाया है और उनको नामाचार्य की संज्ञा प्रदान की है, तो वही नामाचार्य हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने निवास स्थान के निकट उन्होंने स्थान प्रदान किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां गंभीरा में जो काशी मिश्र का घर था वहां निवास कर रहे थे, तो उनके निवास स्थान के पास हरिदास ठाकुर की ठाकुर का भजन कुटीर था और वहीं हरिदास ठाकुर निवास करते थे, तो हरिदास ठाकुर को वहीं स्थान दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। और हरिदास ठाकुर क्योंकि यवन परिवार में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, तो जगन्नाथ मंदिर से दूर उसी स्थान पर जो सिद्ध बकुल अब उसका नाम है, तो उसी स्थान पर हरिदास ठाकुर निवास कर रहे थे और वहीं से जगन्नाथ जी की ध्वजा पताका का दर्शन करते थे। तो जगन्नाथ जी की ध्वजा दर्शन से जगन्नाथ दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वहीं रहकर भजन करते थे, भगवान का नाम जप करते थे और इस प्रकार नित्य प्रति 3 लाख नाम जप करते थे। काल के पश्चात एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु, जबकि प्रतिदिन जाते थे हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए, जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकते, इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ से अभिन्न है, वो नित्य प्रति जाते थे हरिदास ठाकुर को अपना दर्शन देने के लिए। तो भगवान का दर्शन हरिदास ठाकुर नित्य प्राप्त होते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, जगन्नाथ का दर्शन करते थे, और जो कुछ भी जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त होते थे वो जगन्नाथ दर्शन के उपरांत हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, उनको अपना दर्शन देते थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद देते थे उनको। ये उनका नित्य क्रम था। तो एक दिन गोविंद के हाथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ का महाप्रसाद भिजवाया था। तो उस समय हरिदास ठाकुर वृद्ध हो चुके थे, और वृद्ध होने के उपरांत भी वो अपने नियम, नाम जप का जो नियम था उनका नित्य नियम, उसको त्याग नहीं करते थे। वृद्धावस्था में भी 300,000 नाम जप करते थे, और उनका ऐसा नियम था जब तक नाम जप समाप्त नहीं होगा वो प्रसाद सेवन नहीं करते थे। ये उनका दृढ़ नियम था। तो एक दिन गोविंद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आए हरिदास ठाकुर के पास। गोविंद चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवक थे, जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे जगन्नाथपुरी में। तो जब गोविंद जगन्नाथ जी के महाप्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर के पास आए तो उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर सया पर लेटे हुए हैं, पीठ के बल पर लेटे हुए हैं और हाथ में माला लेकर नाम जप कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हरिदास ठाकुर को देखकर गोविंद ने हरिदास ठाकुर से कहा कि मैं आपके लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाया हूं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा नाम जप अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो नाम जप समाप्त करने से पहले मैं कैसे भोजन कर सकता हूं, कैसे प्रसाद का सेवन कर सकता हूं, और तुम महाप्रसाद लाए हो तो महाप्रसाद का लंघन भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यदि कोई महाप्रसाद किसी को देता है तो शास्त्र नियमों के अनुसार महाप्रसाद का तुरंत सम्मान करना चाहिए, तुरंत सम्मान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और प्रसाद का सेवन करना चाहिए। उस समय स्थान, काल, पात्र की योग्यता देखा नहीं जाता है। किसी भी स्थिति में महाप्रसाद का सेवन हम कर सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य तभी तक दंत धावन नहीं किया था, शया से उठे थे, मुख भी नहीं धोया, किन तुरंत महाप्रसाद का सेवन किया महाप्रसाद का सम्मान करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाप्रसाद का लंघन तो मैं नहीं कर सकता, महाप्रसाद का अपमान नहीं कर सकता, और इधर हमारा नाम जब समाप्त नहीं हुआ है इस नियम का भंग भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं थोड़ा सा रंश मात्र महाप्रसाद लेकर सेवन करता हूं, जिससे महाप्रसाद का अपमान नहीं होगा और मेरा व्रत भी भंग नहीं होगा। थोड़ा सा महाप्रसाद रंश मात्र लेकर उन्होंने सेवन किया। तो इस प्रकार उन्होंने दोनों नियमों की रक्षा की। नाम जब समाप्त नहीं हुआ इसलिए वो भोजन नहीं कर सकते, किंतु महाप्रसाद का उन्होंने सम्मान किया। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर लेटे उठकर महाप्रसाद का सम्मान किया और गोविंद चले गए। जाकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को यह समाचार प्रदान किया कि ऐसा लग रहा है कि हरिदास ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो लेटे हुए आज नाम जप कर रहे थे। तो दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए जगन्नाथ जी का दर्शन करके, तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरिदास ठाकुर ने उनका सम्मान किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि हरिदास, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या कारण है, किस लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि प्रभु, मेरा शरीर तो ठीक है किंतु मेरा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या कारण है कि तुम्हारा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा जो नियम है संख्या पूर्वक नाम कीर्तन नाम जप, मैं उसको पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है। तो यहां ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई जप के नियम का पालन नहीं कर सकता तो सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति रुग्णावस्था में है, वो रोगग्रस्त है। कभी कभी हम शारीरिक रोग को रोग मानते हैं किंतु नाम जप प्रतिदिन संख्या पूर्वक हमारा जो नियम है उसको नहीं करना, ये भी रुग्णावस्था रोगग्रस्त अवस्था। तो हरिदास ठाकुर ने इसलिए कहा कि मेरा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है क्योंकि मेरा नाम जप समाप्त नहीं हो रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, तुम अब वृद्ध हो चुके हो, जीवन भर तुमने संख्या पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप तुमने नाम जप किया है, अब वृद्ध हो चुके हो, अब थोड़ा नाम की संख्या कम कर दो क्योंकि तुम ऐसे भी मुक्त पुरुष हो, तुम अब मुक्त हो चुके हो, मुक्त पुरुष हो, इसलिए नाम संख्या के प्रति आग्रह रखना आवश्यक नहीं है, तुम अब कम कर सकते हो। 300,000 नाम जप कर रहे थे, अब वृद्ध हो चुके हो तो अब थोड़ा कम कर दो। तो उस समय हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरी रुग्णावस्था का कारण और कुछ है, ये जो कारण मैं बता रहा हूं आपको ये कारण नहीं है, इसका और कुछ कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या कारण है हरिदास कि तुम अपने को स्वस्थ नहीं मान रहे हो, और ये गुप्त कारण क्या है? तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि प्रभु, मैं समझ सकता हूं कि आप अति शीघ्र अपनी लीला समाप्त करने जा रहे हैं और मेरी यही इच्छा है कि आपकी लीला समाप्त होने से पहले आप अपनी जो लीला समाप्त करने जा रहे हैं मैं उस लीला का दर्शन करना नहीं चाहता। आपकी जो अंतिम लीला है लीला संवरण करने की अवस्था मैं उसका दर्शन करना नहीं चाहता, इसलिए आप लीला संवरण करने से पहले मैं इस शरीर को प्राण को त्यागना चाहता हूं और यही मेरी इच्छा है कि मैं आपके सामने आपके मुख कमल का दर्शन करते हुए अपने मन को आपके मन भृंग को या चक्षुरूपी भृंग को आपके मुख रूपी कमल में निबद्ध करके और आपके दोनों चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करके मैं यह शरीर त्याग करना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है। यदि आप कृपा करें ऐसा संभव है मेरी इच्छा, क्योंकि मैं अत्यंत अधम हूं, अत्यंत पामर हूं, म्लेच्छ कुल में मेरा जन्म हुआ है और आपने कृपा करके मुझे अंगीकार किया है ऐसे पतित जन को अपने सहयोगी के रूप में अंगीकार किया है, ये आपकी महान कृपा है मेरे ऊपर। और केवल इतना नहीं, मुझे आपने वो गौरव प्रदान किया जो गौरव प्रतिष्ठित ब्राह्मण को प्राप्त होना चाहिए, वो गौरव मुझे आपने प्रदान किया है। अद्वैत आचार्य ने अपने श्राद्ध पात्र को कोई प्रतिष्ठित ब्राह्मण को न देकर मुझे प्रदान किया है, ये गौरव आपने ही मुझे प्रदान किया है। तो मेरी यही अंतिम इच्छा है, यदि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं तो मेरी इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास से कहा कि हरिदास, तुम सबको लेकर इस संसार में मेरी लीला है और तुम सभी के साथ मैं आनंद का आस्वादन कर रहा हूं। अवश्य तुम भगवान कृष्ण के परम भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण परम दयामय हैं, कृपामय है, वो अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे साहचर्य से मैं जो आनंद को प्राप्त हो रहा हूं, तुम पहले चले जाओगे मुझे छोड़कर तो मैं कहां से आनंद को प्राप्त होऊंगा। तुम सब भक्तों के साथ रहकर मैं जो लीला करता हूं, जो आनंद का अनुभव करता हूं, वो आनंद का अनुभव तुम चले जाने पर मैं नहीं कर सकूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है कि तुम पहले मुझे छोड़कर चले जा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु, आपके अनंत सहयोगी हैं, पार्षद वर्ग हैं, जो आपकी लीला में सहायक हैं और जो आपके सहयोगियों में शिरोमणि स्वरूप है, वे मेरे मस्तक पर चरण रख सकते हैं। मैं तो अत्यंत हीन दीन पतित पामर आपका एक सेवक में चले जाने से आपके आनंद में कोई कमी नहीं होगी। मेरे से मेरे शिरोमणि मेरे मस्तक पर चरण रखने वाले आपके अनेक उन्नत सहयोगी भक्त हैं, आप उनको लेकर लीला कर संपादन कर सकते हैं। तो यदि कोई पिपली का चींटी मर भी जाए तो उसमें पृथ्वी की क्या हानि होती है? कोई हानि जिस प्रकार नहीं होती है, उसी प्रकार मैं यदि प्राण त्याग दूं तो आपके आनंद प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो जब इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने निवेदन किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास, जो तुम्हारी इच्छा है कृष्ण अवश्य उसको पूरा करेंगे। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आलिंगन किया। और क्योंकि दोपहर का जो कर्म है संध्या कर्म, उसका समय हो चुका था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास से विदा लेकर समुद्र में स्नान करने के लिए चले गए और हरिदास को यह कहकर गए कि मैं कल आकर तुमसे मिलूंगा। तो दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे अपने भक्तों को साथ लेकर जगन्नाथ मंदिर में गए और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के उपरांत अति शीघ्र वह हरिदास ठाकुर के पास आए। तो जब हरिदास ने देखा चैतन्य महाप्रभु को अन्य भक्तों के साथ, तो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और दूसरे भक्तों के चरणों में भी प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास से पूछा कि हरिदास, क्या समाचार है? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु, जो आपकी इच्छा है वही मुझे स्वीकार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के साथ वो संकीर्तन आरंभ किया। तो हरिदास ठाकुर के चारों ओर भक्त लोग कीर्तन करने लगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और भक्तगण भी हरिदास के चारों ओर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ समय तक चला। तब हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बिठाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल का वो दर्शन कर रहे थे हरिदास ठाकुर, अपने दोनों नेत्र जो भ्रमर के समान थे। इस प्रकार भ्रमर की दृष्टि फूल पर निबद्ध रहती है, भ्रमर फूल पर बैठकर मधुपान करता रहता है, उसी प्रकार हरिदास ठाकुर के दोनों नेत्र भ्रमर के समान थे जो चैतन्य महाप्रभु के मुख मंडल रूपी कमल कमल का मधुपान कर रहे थे। इस प्रकार अपनी दृष्टि को निबद्ध करते हुए और चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरणों को अपने वक्ष देश पर धारण करते हुए हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्च स्वर में नाम कीर्तन करते रहे। श्री कृष्ण चैतन्य, इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य कहकर हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए त्याग दे। तो जब हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार प्राण त्याग दिए तो सारे भक्त विस्मित हो गए कि हरिदास ठाकुर का यह प्राण त्याग ये इच्छा मृत्यु के समान था। जिस प्रकार भीष्म देव ने इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त किया था, तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर भी इच्छा मृत्यु के वर प्राप्त हुए थे चैतन्य महाप्रभु से। उन्होंने जो इच्छा की चैतन्य महाप्रभु ने उस इच्छा को पूर्ण कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास के प्रति इतने वत्सल थे, हरिदास ठाकुर के शरीर को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया और हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में रखकर चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया। तो सारे भक्तगण नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में रखते हुए नृत्य और कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया, भावावेश में प्रेम विहोल होकर सभी नृत्य कर रहे हैं। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सूचित किया कि प्रभु अब अधिक समय हो चुका है और हरिदास ठाकुर के शरीर को समाधि देना है। तब चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य बंद किया तो हरिदास ठाकुर के शरीर को एक विमान में रखा गया और उस विमान में हरिदास ठाकुर के शरीर को बिठा करके भक्त लोग समुद्र की ओर ले गए। तो जब हरिदास ठाकुर को लेकर जा रहे थे आगे आगे चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृत्य कर रहे थे और भक्तगण उनके पीछे नृत्य करते हुए नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान करवाया और समुद्र में स्नान कराने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि आज से यह समुद्र महातीर्थ में परिणत हो गया। तो समुद्र, पुरी का समुद्र ऐसे ही तीर्थ स्थान है, तीर्थ है, परम पावन तीर्थ है, क्योंकि पुरी को शंख क्षेत्र कहा गया है। तो ये शंख क्षेत्र जो है शंख के आकार का है, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के मध्य भाग में जो शंख है, शंख नाभि मंडल, जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है शंख नाभि मंडल में, तो ये शंख का जो आकार होता है ये 5 क्रोश परिमित है, 5 क्रोश है, 5 क्रोश से 2 क्रोश समुद्र के भीतर है। शंख क्षेत्र का 2 क्रोश, 2 क्रोश अर्थात 4 मील। तो ये समुद्र के भीतर है। तो समुद्र का जो जल जो है पुरी में वो शंख क्षेत्र में है, इसलिए समुद्र महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ कृतं पापं सिंधु तीरे विनश्यति। यदि कोई दूसरे तीर्थ में कोई पाप करता है, पुरी के समुद्र के तट पर जाने पर ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सिंधु तीरे कृतं पापं सिंधु स्नानात् विनश्यति। और यदि पुरी के समुद्र के तट पर कोई पाप करता है तो समुद्र में स्नान करने पर इसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। ये पुरी समुद्र की महिमा है। तो ऐसे पुरी समुद्र जो है ये तीर्थ है और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को स्नान कराकर उन्होंने घोषणा की कि आज से ये पुरी का समुद्र महान तीर्थ में परिणत हो गया, क्योंकि एक महान भक्त के शरीर का स्पर्श प्राप्त हुआ पुरी समुद्र को। तो इस प्रकार कहकर हरिदास ठाकुर के शरीर को स्नान करवाया चैतन्य महाप्रभु ने, और हरिदास ठाकुर के शरीर पर जगन्नाथ जी के जो चंदन है, प्रसादी चंदन, उसका लेप किया उनके शरीर में। तो भक्त लोग हरिदास ठाकुर के चरणों से जो पानी गिर रहा था स्नान के उपरांत, सब चरणामृत पान कर रहे थे भक्तगण। उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को तट पर लेकर आए, और जहां पर अभी हरिदास ठाकुर की समाधि है समुद्र के तट पर, तो वहीं पर एक गर्त खुदवाया, भक्तों ने गर्त खुदवाया बालू में, उस समय सब बालू थे उस समय, और हरिदास ठाकुर के शरीर को उस गर्त में रखा, और हरिदास ठाकुर के शरीर के ऊपर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद, जगन्नाथ जी के प्रसादी वस्त्र, माला, चंदन ये सब लगाया। उसके पश्चात स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से बालू प्रदान किया हरिदास ठाकुर के शरीर के ऊपर। तो भक्त लोग चारों तरफ कीर्तन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु बालू प्रदान करने के उपरांत सारे भक्तगण भी बालू प्रदान किए। इस प्रकार हरिदास ठाकुर को समाधि दी गई। समाधि देने के उपरांत उसके ऊपर एक चबूतरा जैसा बनाया गया, और चारों तरफ चबूतरा की रक्षा के लिए कुछ चार दीवारी जैसा बनाया गया, जिससे कि दूसरे लोग उसके ऊपर न चढ़ सके। उसके पश्चात भक्त लोग उस समाधि के चारों तरफ कीर्तन करते हुए समुद्र में स्नान करने के लिए गए। समुद्र में स्नान करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों के साथ जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आए। हरिदास ठाकुर के इस महाप्रयाण के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने योग पट को फैला करके वो प्रसाद की भिक्षा मांग रहे थे, जो जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर उस समय महाप्रसाद बेचा जाता था, आजकल भीतर बेचा जाता है महाप्रसाद, किंतु उस समय सिंह दरवाजे पर महाप्रसाद बेचा जाता था। तो जो लोग बैठे हुए थे महाप्रसाद बेचते थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अंचल फैलाकर हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रसाद की भिक्षा मांगते थे कि हरिदास ठाकुर के उत्सव के लिए आप लोग मुझे महाप्रसाद दीजिए। तो सारे पसारी जो महाप्रसाद बेचने वाले, वो पूरा महाप्रसाद का जो बोझा था उसको लेकर आए चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि अब इतना महाप्रसाद चैतन्य महाप्रभु धारण नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप अपने निवास स्थान पर चले जाइए, हम लोग महाप्रसाद लेकर आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने भिजवा दिया, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी चार वैष्णव और चार बोझा ढोने वाले उनको अपने साथ में रखा, और हर पसारी से महाप्रसाद बेचने वाले से कहा कि आप लोग हर प्रसाद से चार चार अंजुली प्रसाद दीजिए। तो इस प्रकार संग्रह करके जितने प्रकार के महाप्रसाद थे, चावल, दाल, सब्जियां, उसको हर प्रसारी से चार चार अंजुली संग्रह करके वो लेकर आए उस सब के स्थान पर। और उसके साथ साथ वाणीनाथ पटनायक और काशी मिश्र, उन लोगों ने भी महाप्रसाद भिजवाया था इस उत्सव के लिए। तो जब महाप्रसाद आ गए तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को पंक्ति में बिठाया भोजन के लिए। ये आजकल जैसे बुफेट सिस्टम नहीं था उस समय, चैतन्य महाप्रभु पंक्ति में बिठा करके भोजन करवाते थे। और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के प्रति इतने स्नेही थे कि स्वयं इस उत्सव में परोसने के लिए खड़े हुए, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं परोसने लगे भक्तों को, और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में थोड़ा सा प्रसाद नहीं आता था, और जब कभी प्रसाद देते थे किसी को, किसी के पत्ते पर, तो चार पांच भक्तों का प्रसाद एक साथ दे देते थे क्योंकि महावदान्य अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, ये थोड़ा सा देना नहीं जानते हैं, जो देंगे बहुत करके देंगे, ये बहुत बड़ी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु सब पांच पांच भक्तों का प्रसाद दे रहे हैं और भक्त लोग खा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अनुरोध किया चैतन्य महाप्रभु को कि प्रभु आप बैठ जाइए हम लोग परोसते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद पंडित, शंकर और काशीश्वर, ये चारों परोसने लगे सभी भक्तों को। तो जब भक्तों को परोसा गया प्रसाद और कहा गया कि आप लोग प्रसाद सेवन कीजिए, तो कोई भक्त नहीं खा रहा है प्रसाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि ये लोग क्यों प्रसाद नहीं खा रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि अभी तक आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है तो कैसे भक्त लोग आपके आपसे पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये मर्यादा है, प्रसाद ग्रहण करने की मर्यादा है। यदि स्वयं भगवान जब प्रसाद ग्रहण नहीं किए हैं तो हमें प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, या भगवान के महान भक्तगण जो गुरुजन स्थानीय हैं, ये लोग जब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, या अपने गुरु से पहले प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए शिष्य को, ये मर्यादा है। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण था काशी मिश्र के घर से। तो जब काशी मिश्र आए, उस समय काशी मिश्र ने देखा कि यहां महोत्सव हो रहा है, तो वो स्वयं प्रसाद लेकर आए चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती, इनके साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। जब चैतन्य महाप्रभु ने भोजन प्रारंभ किया तब जाकर भक्तों ने भोजन प्रारंभ किया। तो इस प्रकार महोत्सव का विधान हुआ, अनुष्ठित हुआ, सभी लोग प्रसाद लिए। तो प्रसाद लेने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से सारे भक्तों को माला और चंदन पहनाया भक्तों का सम्मान करने के लिए, और उस समय उन्होंने घोषणा की, चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि हरिदासेर विजयोत्सव जे कैल दर्शन, जे यहां नृत्य कैल जे कैल कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर के इस विजय उत्सव का दर्शन किया है, जिसने यहां पर नृत्य किया है, जिसने यहां पर कीर्तन किया है, जिसने हरिदास ठाकुर को समाधि में बालू दिया है, और जिस किसी ने इस महोत्सव में भोजन किया है, इन सभी का कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये चैतन्य महाप्रभु का वरदान है। और फिर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से विरह का अनुभव करते हुए स्वयं रोदन कर रहा है, भक्त के विरह में भगवान रोदन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कृपा करके मुझे हरिदास का संग प्रदान किया था, किंतु आज कृष्ण की इच्छा हुई, कृष्ण ने आज उस संग को भंग कर दिया, अर्थात हरिदास ठाकुर को आज कृष्ण ने ले लिया, तो मैं आज हरिदास के संग से रहित तो हो गया। हरिदास और इच्छा जब हैल चली थे, जब हरिदास ठाकुर की इच्छा हुई चले जाने के लिए, तो हमारी भी कोई शक्ति नहीं थी हरिदास को यहां रखने के लिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि इच्छा करते हुए हरिदास ने अपने प्राण त्याग दिए, जिस प्रकार भीष्म देव ने अपना प्राण त्यागे थे इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त होकर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिदास आछिल पृथ्वीर शिरोमणि ता बिना रत्न शून्य हैल मेदिनी। तो हरिदास ये पृथ्वी में भक्तों के शिरोमणि सदृश थे, शिरो मस्तक की मणि के समान थे हरिदास ठाकुर। आज उस मणि के बिना, रत्न के बिना आज पृथ्वी रत्न शून्य हो गया है। तो इस प्रकार कहकर स्वयं हरिदास चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं और सभी भक्तों को कह रहे हैं कि सभी भक्त कहें जय हरिदास, जय हरिदास, जय हरिदास, जय हरिदास। तो इस प्रकार कहकर जय जय हरिदास बलि कर ध्वनि करी हरिध्वनि एते बलि महाप्रभु नाचिल आपने। सवे गाय जय 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 हरिदास नामेर महिमा जय करिल प्रकाश। तो यही तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जहार श्रवण यही तो कहिलु हरिदासेर विजय, जहार श्रवण कृष्ण दृढ़ भक्ति है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव का वर्णन किया है और जो कोई भी इसका श्रवण करता है इस विजय उत्सव, उसका भगवान कृष्ण में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जय श्री हरिदास ठाकुर की, जय श्री हरिदास ठाकुर की, जय श्री हरिदास ठाकुर की, जय श्री श्री गौरनिताय की, जय श्री श्री राधा रास बिहारी तविशख देवी की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।